सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिधि प्रकरण में उस ज्ञानी की जो अवस्था है कौन सी, शोक निवृत्ति और तृप्ति, ये दो अवस्था जो है अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति, ये जो दो अवस्था है ये दो अवस्था किसके माध्यम से बताई है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत। इस मंत्र से जो ग्रंथ आरंभ हुआ था, ये प्रकरण आरंभ हुआ था, उसी मंत्र में ये क्या है, दो अवस्थाएं बताई ज्ञानी की। तो वो अवस्था जो है, दोनों अवस्था, उन दो अवस्थाओं के द्वारा अब क्या है आगे वाला विचार करेंगे कि वो जो दो अवस्था उसको हो गई, शोक निवृत्ति और तृप्ति। अपरोक्ष ज्ञान से ही क्या हो जाता है, शोक की निवृत्ति होती है, जैसे ही शोक की निवृत्ति होती हो वो तृप्त हो जाता है। इसको लेकर के आगे वाले श्लोक आने वाले हैं। 51वें श्लोक में हम लोगों ने थोड़ा विचार किया था। तो जो सात क्या है अवस्था है जीव की, जो सात अवस्था है ना, अज्ञान, अवृत्ति, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्षमति, शोक निवृत्ति और तृप्ति, ये जो सात अवस्था है, इन अवस्थाओं में से ये दो अवस्था यहां पर बताई और उन दो अवस्थाओं का प्रतिपादन उस मंत्र में किया। वो मंत्र ही उसके लिए है, दो अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए, क्योंकि जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है उसको तो वहां पर उसको चिदाभास मिथ्या अनुभव में आता है उस ज्ञानी को, इसलिए वो ज्ञानी मिथ्या चिदाभास के लिए और अनित्य वस्तुओं के लिए इस शरीर के द्वारा अपने आप को वो तपाता नहीं है, ये बताया है दो अवस्था। आगे कहते हैं, हम लोग 52वें श्लोक में चलने वाले थे कल, अपरोक्ष ज्ञान जन्य जन्याया तृप्ते निरंकुशत्व। अपरोक्ष ज्ञान से जन्य क्या है, निरंकुश तृप्ति है, अर्थात वो निरतिशय तृप्ति है, मतलब अब वो कभी अतृप्त सा नहीं रहेगा, तृप्त हमेशा तृप्त रहेगा। अतृप्ति रहने के बाद कुछ इच्छा होगी, नहीं होगी। इच्छा तब होती है जब अतृप्त हो, कुछ कमी हो, जिसको परिपूर्ण है तो उसको किसी की इच्छा होती नहीं है। तो इसकी, इस ज्ञानी की क्या है, निरंकुश तृप्ति होने के कारण अब वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। अब उस निरंकुश तृप्ति की विरोधी तृप्ति कौन सी है, संकुश तृप्ति। निरंकुश तृप्ति का अर्थ निरतिशय तृप्ति, और उसकी विरोधी तृप्ति कौन है, सातिशय तृप्ति। वही कहते प्रतियोगी प्रदर्शन पुरस्सरम, प्रतियोगी अर्थात विरोधी, किसकी विरोधी, निरतिशय तृप्ति की विरोधी जो तृप्ति है उसका प्रदर्शन करते हुए क्या यहां पर कहने जा रहे हैं, प्रतियोगी प्रदर्शन पुरस्सरम, अर्थात जो निरतिशय तृप्ति की जो विरोधी तृप्ति, कौन, सातिशय तृप्ति, अंकुश वाली तृप्ति, उसको क्या है सामने रखते हुए क्या है यहां पर बोल रहे हैं। सांकुशा वैषयैस्तृप्ति सांकुशा विषयैस्तृप्ति रियं तृप्तिर निरंकुशा रियं तृप्तिर निरंकुशा कृतं कृत्यं प्रापणीयम् कृतं कृत्यं प्रापणीयम् प्राप्तमित्येव तृप्यति प्राप्तमित्येव तृप्यति। संकुशा विषय ही तृप्ति हैं। पहले संकुश वाली तृप्ति बताते हैं अर्थात अंकुश वाली सातिशय तृप्ति। वो कहां से मिलती है तृप्ति तो कहते हैं विषय ही विषय भोगों के द्वारा सांसारिक वस्तुओं के द्वारा जो तृप्ति मिलती है वो संकुशा तृप्ति है। क्यों संकुशा तृप्ति है इस तृप्ति पर अंकुश क्यों लग जाता है क्योंकि अन्य विषय की जैसी ही कामना हो जाती है तो पहली वाली तृप्ति गायब हो जाती है अंकुश लग जाता है उस तृप्ति पर। अब वो तृप्ति तृप्ति रहती नहीं है जैसी दूसरी इच्छा हो जाती है एक विषय में जो तृप्ति मिली है वो तृप्ति तब तक ही है जब तक दूसरी विषय की इच्छा न हो। जैसी इच्छा हो जाती है पहली वाली तृप्ति गायब हो जाती है फिर दूसरी विषय में वो लग जाता है उस विषय को प्राप्त करने में और जब तक वो विषय को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो तृप्त नहीं होता वो चैन से बैठता नहीं है। इयम तृप्ति निरंकुशा किंतु ज्ञानी को जो तृप्ति मिली है वो कैसे निरंकुशा क्यों निरंकुश है क्योंकि जो तृप्ति मिली है उस तृप्ति के बाद कोई इच्छा ही नहीं होती कोई कामना ही होती नहीं है। कामना न होने के कारण जो तृप्ति हुई है वो मिटती नहीं है। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव तृप्यति। कृतम अर्थात जो करना था उन्होंने सब कुछ कर लिया है। कृत्यम कृत्यम अर्थात जो करने योग्य है उसको भी कर लिया उन्होंने। प्रापणीयम जो प्राप्त करने योग्य है उसको क्या उन्होंने प्राप्त कर लिया और प्राप्तम अर्थात जो प्राप्त करना था प्राप्त करने योग्य था वो भी कर लिया उन्होंने। इत्येव तृप्यति इस कारण से क्या है वो तृप्त हो जाता अब शेष कुछ बचता नहीं है। जितना भी करना करने वाली चीज थी उसको कर लिया जो करने योग्य है उसको भी कर लिया जितनी भी वस्तु जो प्रापणीय है प्राप्त करने योग्य उसको सब प्राप्त कर लिया और जो प्राप्त करने योग्य था उसको भी उसने प्राप्त कर लिया। अब कुछ शेष बचा ही नहीं है न बचने के कारण क्या है वो तृप्त रहता है तृप्यति। इसका विस्तार करेंगे अभी आगे ये तो संक्षिप्त में बताया। टीका देख लीजिए सांकुशेति विषय लाभ जन्यायाः तृप्तिर विषयांतर कामनया कुंठितत्वात् संकुशत्वम। ये जो अज्ञानियों की जो तृप्ति है वो तृप्ति किससे जन्य है तो विषय लाभ जन्यायाः विषय लाभ से ही क्या है विषय लाभ यदि उत्पन्न हो गया अर्थात विषय लाभ हो गया जैसे लाभ हो जाता है तो वो तृप्त हो जाता है अर्थात विषय प्राप्त हो गया और उसका उपभोग करेगा तो तृप्ति मिलती है। किंतु वो जो तृप्ति है कब तक रहेगी? तो विषयांतर कामनया कुंठित, जब तक वो अन्य विषय की कामना नहीं होती तब तक ये तृप्ति है। जैसे ही कामना हो गई विषयांतर की, तो वो क्या हो जाती? पहली वाली तृप्ति कुंठित हो जाती है, रुक जाती है तृप्ति। तो कुंठित होने के कारण क्या हो गया? संकुशत्वम। किसने अंकुश लगाया भाई उसको? पहली वाली जो तृप्ति है उस पर अंकुश किसने लगाया? दूसरी वाली कामना ने क्या कर दिया? पहली वाली तृप्ति पर अंकुश लगा दिया। तो जिसमें अंकुश है वो तृप्ति कैसी हो गई? जिस तृप्ति में अंकुश है वो संकुशा तृप्ति हो गई। और वो अंकुश कौन लगा रहा है उस तृप्ति पर? दूसरी वाली कामना। दूसरी वाली कामना जैसे ही हो जाती है तुरंत क्या हो जाती है? उस पर अंकुश लग जाता है पहली वाली तृप्ति पर। इसलिए पहली वाली जो तृप्ति है विषयजन्य तृप्ति वो संकुशा है। अस्यास्तु तद अभावान निरंकुशत्वम। किंतु ज्ञानी को जो तृप्ति हुई है वो तृप्ति क्या है? निरंकुशा है। क्यों निरंकुशा है? क्योंकि उस तृप्ति को अंकुश लगाने वाला काम है ही नहीं है, कामना कोई है ही नहीं है। कामना न होने के कारण जो ज्ञानी को तृप्ति हुई है वो तृप्ति कैसी हुई? निरंकुशा हो गई। उस तृप्ति पर अंकुश करने वाला काम है ही नहीं है, काम न होने के कारण वो तृप्ति कैसी हो गई? निरंकुश हो गई। तदेव दर्शयति कृतम इति। उसी तृप्ति को दिखाते किसके द्वारा? उत्तरार्ध के द्वारा। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव तृप्यति। वो जो तृप्ति है निरंकुशा वो क्यों है? क्योंकि जो करने योग्य था उसको कर लिया, और जो करने योग्य है उसको भी कर लिया उन्होंने, और जो प्राप्त करने योग्य था उसको क्या है? प्राप्त कर लिया, और जो प्राप्त करने योग्य उसको भी उसने क्या है? प्राप्त कर लिया। अब शेष अब कुछ रहा ही नहीं है कामना करने जैसे, सब कुछ इसी तृप्ति में क्या है? आ गया। आत्मज्ञान की कामना में ही क्या है? सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। आत्मज्ञान की कामना की, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उस आत्मज्ञान से उनको तृप्ति हो गई। उस तृप्ति में ही क्या है? हर संसार की तृप्ति आ गई। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ गए, जैसे समंदर का स्नान करने से सभी नदियों का स्नान का फल मिल जाता है, इसी तरह उस ज्ञानी को क्या हो जाता है? जो तृप्ति मिलती है आत्मज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान के बाद, वो तृप्ति में सभी संसार की तृप्ति आ जाती है। इसलिए और किसी चीज की इच्छा उसको होती नहीं है, इसलिए निरंकुश तृप्ति है उसकी। अब इसी का विस्तार करके बताएंगे आगे। कृत कृत्यत्वम एव उपपादयति। ये कृत कृत्य क्या चीज है उसी को स्पष्ट करके बता रहे हैं। ऐहिकामुष्मिक व्रात सिद्ध्यै मुक्तिश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्याभूत् तत्सर्वमधुना कृतम्। कृतकृत्य क्या है ये बताते हैं। ऐहिक अमुष्मिक व्रात सिद्ध्यै। वो जो ज्ञानी ज्ञान होने के पहले उसने क्या है, इस लोक में जो इष्ट है, मतलब प्राप्त करने योग्य जो है इष्ट आपने प्राप्त करने योग्य, और जो अनिष्ट है जिसको निवृत्त करने योग्य है, तो जो प्राप्त करने योग्य ज्ञान होने के पूर्व में क्या है, उस ज्ञानी ने क्या किया है, जो प्राप्त करने योग्य था इस लोक में, यह लोक में जो इष्ट वस्तु है उसको प्राप्त कर लिया, अर्थात कर लिया। आई ही का मतलब इह लोक में, आमुष्मिक मतलब स्वर्ग लोक। तो इस लोक संबंधी अर्थात मृत्यु लोक संबंधी जो कुछ इष्ट है उसको क्या है, उसने प्राप्त कर लिया, और इस लोक में जो अनिष्ट है उसको निवृत्त कर लिया, वो क्या हो गया, कृत कृत्य। और वो कृत क्या है तो बताएंगे अब। और अमुष्मित अर्थात स्वर्गलोक संबंधी, स्वर्गलोक संबंधी जो भी यज्ञ आगादि उपासना है व्रत है उसको भी क्या उन्होंने सब कुछ कर लिया, किसके लिए, मोक्ष साधन के रूप में वो सभी साधनों को क्या उसने कर लिया। और अब जो वर्तमान में प्राप्त करने योग्य और प्रापणीय जो वस्तु है उसके लिए क्या किया है उसने, तो कहते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन, वो सब कुछ कर लिया उसने। वही कहते हैं ऐहिक अमुष्मिक व्रात सिद्ध्यै, इस लोक और परलोक के जितने भी प्राप्त करने योग्य करने योग्य प्रापणीय ये सब कुछ क्या है, यह लोक और परलोक ये सब कुछ क्या है, कर लिया। बहुकृत्यम पुरास्याभूत तत्सर्व अधुना कृतम, जो कुछ कृत्य था बहु पूर्व में ज्ञान होने के पूर्व में सब कुछ कर लिया उन्होंने, अधुना क्या है अब वो तृप्त है इस समय। हाँ मतलब जो करने योग्य और जो करने योग्य था वो सब कर लिया, जो प्राप्त करने योग्य और जो प्राप्त करने योग्य था वो सब दोनों कर लिया, वो इसका विस्तार करेंगे टीकाकार। आही केति अस्य विदुषः तत्वज्ञान उदयात पूर्वम, कहते हैं इस विद्वान को क्या है, जिसको क्या है तृप्ति हो चुकी है उस विद्वान के बारे में बताते हैं। तत्वज्ञान उदयात पूर्वम, उस विद्वान के तत्वज्ञान के उदय के पूर्व में क्या है, यह लोके इस लोक में इष्ट प्राप्त ये और अनिष्ट निवृत्त ये, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्या क्या किया उसने, तो कहते कृषि वाणिज्य आदि कम, खेती बाड़ी इत्यादि जो कुछ करना कर लिया, स्वर्गादि सिद्ध ये और स्वर्गादि की सिद्धि के लिए, ये तो यह लोक का हो गया क्या, वाणिज्य आदि व्यापार करना खेती करना इस लोक की बात हो गई, और स्वर्ग के लिए क्या है, याग उपासना अधिकम, स्वर्ग जाने के लिए याग करने का यज्ञ करना पड़ेगा आपको, ऐसे कुछ अनुष्ठान है जिन अनुष्ठानों से क्या है आप स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वर्ग आदि की सिद्धि के लिए जो याग है उपासना है उन सभी को क्या, ये हो गए कृत और कृत्य। कृत मतलब कृष्यादि वाणिज्यादि, मतलब इस लोक में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति हो गया कृत, और कृत्य करने योग्य क्या है, स्वर्ग प्राप्ति, उसके लिए जो यज्ञ आगादि ये सब उसने क्या है, ज्ञान के पूर्व में ही सब कुछ कर लिया। मोक्ष साधन ज्ञान सिद्धये श्रवणादिकं च इति बहुविधं कर्तव्य आसीत्, अब ये कृत हो गया, एक कर्तव्य है। क्या है कृत्य? मतलब कृत्य मतलब करने योग्य, और कृत मतलब ये अमुष इस लोक में जो कुछ सांसारिक साधन इष्ट साधन हाँ वो कर लिया, और कृत्य मतलब क्या? करने योग्य। हाँ, एक कृत है अनिष्ट वस्तु, मतलब जो इस लोक में अनित्य वस्तु जो हमारे लिए इष्ट है, जैसे मान लीजिए धन है, संपत्ति है और इष्ट है। जैसे धन है तो इष्ट किस लिए है? क्योंकि उस धन के द्वारा दान धर्म कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए इष्ट हो गया। हम अपनी क्या है शारीरिक सुविधाओं को पूर्ण कर सकते हैं उन धन से, तो वो इष्ट हो गया। शरीर में कपड़ा है वो इष्ट है हमारे लिए ढकने के लिए। तो वो जो है इस लोक में जो कुछ इस शरीर के लिए जो कुछ चाहिए उसको कहते हैं कृत। वो कर लिया, वो किसके द्वारा कर लिया? वाणिज्य आदियों के द्वारा, व्यापार करके, खेती करके, काम करके सब कर लिया, वो हो गया कृत। और कृत्य क्या है? करने योग्य। इस लोक में ये करते हुए दूसरा करने योग्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति का साधन, वो कौन हो गया? याग आदि। उस याग आदियों को भी क्या है? कर लिया। आगे कहते हैं ये कृतम ही डाल दीजिए, गलत हो गया। याग आदि क्या हो गया? कृतम ही आ गया। वाणिज्य आदि और स्वर्ग आदि के लिए यज्ञ, ये हो गया कृत। अब कृत्य में लीजिए कौन है? मोक्ष साधन ज्ञान सिद्धये श्रवणादिकम च बहुविधम कर्तव्य, ये कृत्य है। कृत्य मतलब करने योग्य। वो क्या है? मोक्ष सिद्धि के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन, ये भी उसने क्या है? कर लिया। कर्तव्य मासित वो भी हो गया। इदानीं तो अब क्या है? जो कृत था वो भी हो गया, और करने योग्य जो था वो भी हो गया। इदानीं तो सांसारिक फल इच्छा भावात्, अब इस समय में उस ज्ञानी को सांसारिक फल की इच्छा का क्या है? अभाव है। अब उसकी कोई इच्छा रही नहीं। ब्रह्मानंद साक्षात्कार से सिद्धत्वात्, क्यों भाई इच्छा नहीं है? क्योंकि वो ब्रह्मानंद का साक्षात्कार उनको हो गया है, इसलिए अब कोई सांसारिक फल इच्छा अब उनको रही नहीं है, समाप्त हो गई ब्रह्मानंद का साक्षात्कार होने के कारण। तत्सर्वं कृषि याग श्रवणादिकं कृतं कृत प्राय भूतं अभूतं। जब ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हो गया तो क्या हो गया? तत्सर्वं कृषि याग श्रवणादिकं, कृषि और याग और श्रवणादि ये सब क्या है? कृतं प्राय, सब कुछ कर लिया। किसके पहले? ज्ञान होने के पहले। साक्षात्कार हो गया तो साक्षात्कार के पूर्व में सब स्थिति है, तो साक्षात्कार होने के पहले सब कुछ क्या है? कृत प्राय अभूत, सब कुछ कर लिया है। अतः परम अनुष्ठेयत्व तो अभाव, अब कुछ अनुष्ठान करने जैसा उसको रहा नहीं है, यही इसकी क्या है? ये कृत कृत्यत्व है। और कहते हैं वो कृत कृत्य के विषय में, एवं कृतकृत्यत्वम उपपाद्य तत्फलभूताम तृप्तिम दर्शयति। चलिए कृतकृत्य हो गए, अब करने जैसे कुछ रहा ही नहीं है, है ना? प्राप्त करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, है ना? तो उसका फल क्या है कृतकृत्य का? जो कृतकृत्य हो गए इसका फल क्या है? तत्फलभूताम तृप्तिम दर्शयति, वो कृतकृत्य का फल क्या है? तृप्ति। कृतकृत्य का फल क्या है? तृप्ति। कृत और कृत्य ये दो चीज है, इन दोनों ये दो करने के बाद क्या है? एक तृप्ति नाम का फल मिलता है, उसी को दर्शा रहे हैं। तदेतत् कृतकृत्यत्वम्, तदेतत् कृतकृत्यत्वम् प्रतियोगी पुरस्सरम्, प्रतियोगी पुरस्सरम् अनुसंदध देवाय, अनुसंदध देवाय मेवं तृप्यति नित्यशः, मेवं तृप्यति नित्यशः। तदेतत कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरस्सरम्। ये जो कृतकृत्यत्व बता रहे कि प्रतियोगी पुरस्सरम्, अर्थात उस कृतकृत्य का जो प्रतियोगी अर्थात विरोधी, उसको क्या है पहले बता करके बाद में कृतकृत्य के फल को बताएंगे। अनुसन दधेव वा अयम इति एवं तृप्यति नित्यशः। अब कहते हैं अर्थात इसका अनुसंधान करते हुए इस कृतिकृत्यत्व के विषय में पहले क्या करते हैं, जो फल बताना है कृतिकृत्य का, उस कृतिकृत्य के फल को बताने के लिए पहले क्या करते हैं, प्रतियोगी पुरस्सरम्। पहले प्रतियोगी को अर्थात उसका विरोधी अर्थात अकृतकृत्यता जिसको कहते हैं, उसको स्मरण करते हुए जो कृतकृत्य हुआ है वो क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। अर्थात कृतकृत्य का फल क्या हो गया, तृप्ति। अब वो तृप्त कैसे हो जाता है, जो कृतकृत्य नहीं हुआ था ज्ञानी, उस क्यों कृतकृत्य नहीं हुआ था उस सब चीजों को स्मरण करता है, और स्मरण करने के बाद जो कृतकृत्य हो गए जिसके कारण, उसको भी क्या वो स्मरण करता है, स्मरण करके तृप्त रहता है। जैसे कहते हैं ना, अरे क्या पहले हम लोग थे, कितनी बढ़िया अपना, कितनी विकट परिस्थिति थी, आज कितना बढ़िया है। मतलब पहली परिस्थिति को याद करके आज की स्थिति में क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञानी भी पूर्व स्थिति को स्मरण करता है और वर्तमान स्थिति को देखता है तो बड़ा आनंद हो जाता है। सचमुच क्या आज आनंद है, आज जिस स्थिति में हम बहुत ही अच्छे हैं, पहली स्थिति बहुत ही बेकार थी, पहले हम दुखी थे, कष्ट होता था, जन्म मरण का जो है उसको याद आती कि हम कैसे पैदा होते थे, कैसे मरते थे, और इस जन्म और मरण के बीच में कैसे कैसे कष्ट होता था, क्या क्या होता था, और आज हमने ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया है तो आज हम मैं कितना आनंदित हूं। वो आनंद जो होता है उसको कैसा होता, कैसा होता है, पहले वाला स्मरण करते हुए आज आनंद होता है। प्रतियोगी पुरस्सरम, प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वकम। प्रतियोगी पुरस्सरम मतलब प्रतियोगी इसका जो कृतकृत्य हुआ था वो, अब वो फल के बारे में ये बताते हैं कि वो जो फल है उसका, उस फल को अनुभव करता है, कैसे अनुभव करता है, प्रतियोगी अनुसंधान पूर्वकम, अतृप्ति का अनुसंधान अर्थात स्मरण करता है। अरे हम जो है अज्ञान अवस्था में थे तो उस समय में हमें क्षणिक तृप्ति थी, और क्षणिक तृप्ति के लिए हम कितनी मेहनत करते थे, कितना प्रयास करना पड़ता था हमको, इसका क्या करता है वो, स्मरण करता है। यथा भवति तथा एवं वक्षमाण प्रकारेण सर्वदा तृप्यति। अब वो स्मरण करता है और वो स्मरण करके कैसे उससे हट करके अपनी तृप्ति का अनुभव करता है उसको क्या है, विस्तार करके बता रहे। तदेव अनुसंधानम प्रपंचयति। वो तृप्ति जो है कैसे उसको वो होती है, अनुभव कैसा होता है अपने आनंद का, परमानंद का, ब्रह्मानंद का आनंद जो है, वो जो आनंद का अनुभव होता है, जो तृप्त होता है, वो तृप्ति का जो है क्या कर रहा है, पहले प्रतियोगी अर्थात उसका विरोधी, तृप्ति का विरोधी अर्थात निरंकुशा जो तृप्ति का विरोधी सांकुशा जो तृप्ति है उसको क्या कर रहा है, पहले स्मरण कैसे करता है उसके विषय में बताते हैं। दुखिनो ज्ञा संसरंतु, दुखिनो ज्ञा संसरंतु कामं पुत्राद्यपेक्षया, कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानंदपूर्णोऽहम्, परमानंदपूर्णोऽहम् संसरामि किमिच्छया, संसरामि किमिच्छया। दुखिनो अज्ञा संसरन्तु कामं पुत्रादि अपेक्षया। देखिए ये जो कृतकृत्य का जो विरोधी अर्थात अकृतकृत्यता उसका स्मरण करके क्या करता है वो ज्ञानी, अपने भीतर उस पूर्णानंद का अनुभव करके ये सोचता है कि मैं अब क्या किस इच्छा से करूं, मैं अब इच्छा करने जैसा कुछ रहा नहीं है। कहते हो दुखिनो आज्ञा संसरंतु, ये जो अज्ञानी है दुखी जीव जो है अज्ञानी जीव है संसरंतु, वो क्या है संसार में आते रहते हैं। क्यों आते रहते भाई, तो पुत्रादि अपेक्षया कामम, उसकी उसके भीतर काम है इच्छा जगी पड़ी हुई किसकी, पुत्रादि की। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को क्या चाहिए, अनंत इच्छा है। तो कहते हैं ये जो अज्ञानी दुखी जो जीव है वो पुत्रादि की अपेक्षा से क्या है कामना करता है, पुत्रादियों की अपेक्षा, पुत्रादियों की अपेक्षा से कामना करता है। इसीलिए क्या हो गया वो संसरंतु, वो संसार में आएगा, बार बार आएगा, बार बार मरेगा, क्योंकि पुत्रादियों की इच्छा है। अथवा जिसको पुत्रादियों की इच्छा होती है तो जीवन भर क्या कष्ट ही उसके जीवन में है, क्योंकि पुत्रादि की कामना का मतलब क्या हो गया, उसको विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह करेगा तो फिर विवाह के बाद अपनी पत्नी को रखने के लिए तो धन संपत्ति अर्जित करना पड़ेगा, तो ये सब क्या है कष्ट है ना, दुख है ये। तो अज्ञानी जो है इन पुत्रादियों की कामनाओं के कारण क्या है दुखी रहता है। किंतु कहते हैं परमानंद पूर्णो अहम, मैं तो परमानंद पूर्ण हूं। संसरामि किम इच्छया, मैं किस इच्छा से इस संसार में आ जाऊं, इस संसार में किस इच्छा के कारण मैं अपने आप को दुखी करूंगा, अर्थात नहीं करूंगा, कोई इच्छा भी नहीं करूंगा, न मैं इस संसार से आऊंगा, संसार में आऊंगा। संसार में आने के लिए क्या चाहिए, इच्छा चाहिए, हाँ प्रारब्ध भोग, हाँ अब वो तृप्त, हाँ अपरोक्ष बोध हो गया, उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, परमानंद रूप मैं हूं, ये हो गया, वो तृप्त हो गया। और तृप्त होने के बाद ये पहली वाली बात याद करता है कि अब मैं संसार क्यों करूं, कोई कहे दी मान लीजिए आपको ये करना चाहिए, वो कहेगा मैं क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, आप यहां जाइए, अरे मुझे कुछ इच्छा ही नहीं तो वहां क्यों जाऊं मैं, अर्थात मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे भीतर कोई इच्छा नाम की कोई चीज ही रही नहीं है, पूर्ण काम हो गए। परमानंद पूर्ण अहम, मैं तो परमानंद से पूर्ण हूं। किम इच्छा या संसारा में, मैं किस इच्छा से इस संसार में आ जाऊंगा, अथवा किस इच्छा से जो है दुखी हो जाऊंगा, इच्छा ही नहीं है, तो दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है तुम्हें संसार में आने का, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, कृतकृत्य का फल हो गया। जो कह रहे मैं कृतकृत्य हो गया, मतलब क्या हो गया, उसको फल मिल गया। क्या फल मिल गया, परमानंद रूप फल मिल गया। परमानंद रूप फल मिलने के कारण अब वो किस इच्छा से इस संसार में आएगा, अर्थात नहीं आएगा, इच्छा ही नहीं होगी उसको, तो संसार में कहां से आएगा। संसार में आने के लिए इच्छा चाहिए, इच्छा होगी तो संसार करना ही पड़ेगा। दुखिनो आज्ञा इत्यादि ना कहते हैं, कृतकृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्ततया पुनः। ये जो कृतकृत्य हो गया अर्थात तृप्त हो गया, कृतकृत्य के द्वारा क्या हो गया, तृप्त हो गया। प्राप्त प्राप्ततया पुनः अर्थात प्राप्त जो करना था वो भी प्राप्त कर लिया, जो प्रापणीय उसको भी प्राप्त कर हो गया सब कुछ। तो कहते हैं आगे आएंगे, 14वां प्रकरण आएगा उसमें एक श्लोक आता है, 58वां श्लोक, उसमें कहा है, क्या कहा है तो कहते हैं, एक मिनट आपको बता देते हैं। कृतकृत्यतया तृप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सो निरंतरम। इसके द्वारा आपको बताएंगे वहां पर कि वो प्राप्त प्राप्ततया क्या हो गया, उसके कारण क्या तृप्त हो गया। इत्यतः प्राक्तनेन ग्रंथेन तत्र तावद् ऐहिक सुख सुखाभिर्थिभ्यो वैलक्षण्यम सस्य दर्शयति। अर्थात कहते हैं प्राक्तनेन, इसे पहले भी कहा है ग्रंथे ने, क्या तत्र तावत इह ऐहिक सुख अभ्यर्थिनो, जो इस लोक की क्या है सुख की जो कामना करने वाला, उससे ये वैलक्षण्य है इसमें, किसमें, जो कृतकृत्य हो गया है उसमें क्या है वैलक्षण्य है। किससे वैलक्षण्य है, जो कामी व्यक्ति है अर्थात जो कृतकृत्य नहीं हुआ है, जिसको अभी प्राप्त और प्राप्तव्य या अभी क्या है अभी हुआ नहीं है पूर्ण रूप से, उससे विलक्षण है। मैंने जो कहने का तात्पर्य कि जो कृतकृत्य नहीं हुआ है, हाँ प्राक्तन मतलब इस पूर्व वाले ग्रंथ में, हाँ अर्थात जो पहले वाले ग्रंथ के द्वारा बताया था, तत्र तावद् ऐहिक सुख अभ्यर्थिभ्यो वैलक्षण्यम सस्य दर्शयति। कहते हैं जो ऐहिक सुख है ना, उस ऐहिक सुख की इच्छा करने वाले जो कामी लोग अज्ञानी लोग, उनसे क्या है ये ज्ञानी विलक्षण है, वैलक्षण्यम सस्य दर्शयति। वो ज्ञानी क्या है, उन अज्ञानियों से अपने आप को अलक्ष क्या है विलक्षण रूप से क्या है दिखाता है, अर्थात वो मानता है कि मैं इन लोगों से अलग हूं, अज्ञानियों से कैसा हूं अलग हूं। क्योंकि अज्ञानी क्या है, अज्ञानता के कारण दुख के कारण क्या करते हैं, पुत्रादियों की इच्छा करते हैं और संसार में आते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो परमानंद में हूं, मैं परमानंद के कारण क्या हूं पूर्ण हूं, इसलिए किस इच्छा से संसार में आ जाओ, अर्थात मुझे इस संसार में किसी भी इच्छा से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं तो संसार में कहां से आएंगे। आगे कहते हैं स्वर्गादि अर्थम कर्मानुष्ठातृभ्यो वैलक्षण्यम आह। अच्छा एक तो स्वर्गादि जो अर्थ है वो कौन है, स्वर्ग आदि के अर्थ के लिए क्या चाहिए, कर्मानुष्ठान चाहिए, हाँ उससे भी वैलक्षण्य दिखा रहे हैं, किसमें, उस ब्रह्म ज्ञानी में जो कृतकृत्य हो गया है, जिनको क्या है तृप्ति हो गई है, तृप्ति तृप्त होने के कारण स्वर्गादि जो कर्मानुष्ठान है उससे भी क्या है विलक्षणता दिखा रहे हैं। अनुतिष्ठन्तु कर्माणि अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः परलोक इयासवः सर्वलोकात्मक कस्मात् सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम् अनुतिष्ठामि किं कथम् अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकी या सवः। जो परलोक की इच्छा करने वाले वो अनुष्ठान करे। मुझे तो अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? सर्वलोकात्मक कहा, मैं तो सर्वलोकात्मक हो गया, अब मैं ही मैं हूं। क्या है? मैं ही मैं, उस ब्रह्म के सिवा कुछ उसको नजर ही नहीं आ रहा है। सब कुछ क्या है? वासुदेव सर्वम, इस तरह का। हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म प्रतीत हो रहा है। सर्वलोकात्मक, अपने आप को सर्वलोकात्मक क्या है अनुभव कर रहा है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही स्वर्ग हूं, स्वर्ग की वस्तु भी मैं हूं, स्वर्ग का आनंद ही मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। अपने आप को क्या है वो अनुभव करता है। तो फिर जब मैं ही सब कुछ हूं तो कस्मात अनुतिष्ठामि किम कथम, किस कारण से किस अनुष्ठान को करूं मैं? अर्थात किसी अनुष्ठान को मुझे करने की जरूरत नहीं है। जो लोग स्वर्ग के लिए अनुष्ठान करता है तो स्वर्ग रूप भी तो मैं ही हो गया, स्वर्ग रूप मैं ही हो गया, स्वर्ग की वस्तु भी मैं हूं, स्वर्ग का आनंद भी मैं, सब कुछ मैं ही हो गया, सर्वात्मक हो गया मैं, साधनात्मक भी हो गया और साध्यात्मक भी, सब कुछ मैं ही हो गया। जब सब कुछ मैं ही हो गया तो मैं किसकी इच्छा करूंगा? अर्थात किसी की इच्छा नहीं कर सकता हूं। कस्मात अनुतिष्ठामि, कैसे अनुष्ठान कर सकता हूं मैं? क्यों? हाँ, अब तक काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, अब कोई नहीं, कुछ नहीं रहा। अनुतिष्ठन्तु इति आगे कहते हैं, ननु स्वार्थ प्रवृत्ति अभावे भी परार्थ प्रवृत्ति किम न स्यात्। चलो स्वार्थ के अपने लिए तो नहीं करता है किंतु दूसरे के लिए तो करे, करना चाहिए। किम न स्यात्, उसकी प्रवृत्ति दूसरे के लिए क्यों नहीं हो सकती है? इति आशंक्य अधिकाराभावात् सापि नास्ति। उत्तर देते हैं, अधिकार का अभाव होने के कारण क्या है वो भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके विषय में हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।